ओम शांति। आज भट्टी का तीसरा दिन है, कैसा लग रहा है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था कि आप लोग मौन में हैं और ऊपर से मास्क भी पहन रखा है, तो हाथ खड़ा करके बताएं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ज्ञान और योग की गहराई कुछ मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम गोते लगा रहे हैं। घर में रहते हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, उसके अपने कारण हैं, अनेक कारण हैं। हमारी बहुत सारी जवाबदारियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं और भी कई बातें हैं। यहां वो सब कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पास बहुत समय है और वातावरण भी ऐसा ही है जहां दिन रात हम ज्ञान और योग में अपने आप को मगन रख सकते हैं। और जब तक हम ज्ञान और योग में मगन नहीं रखेंगे, उसके लिए समय नहीं देंगे, उसकी गहराई नहीं मिलेगी, उसके तले में हम उतर नहीं पाएंगे। और जब तक हम तले में नहीं उतरेंगे, तब तक हमको हीरे और मोती नहीं मिलेंगे, क्योंकि हीरे मोती कहाँ पे होते हैं? पानी के ऊपर नहीं तैरते, कहाँ रहते हैं? तले में। हमें भी तले में जाने की जरूरत है। एक घंटा योग कर लिया, दो घंटा योग कर लिया, सुबह सुबह बस एक बार मुरली पढ़ ली, सोने से पहले बाबा को 10 मिनट याद कर लिया, ये केवल एक ड्यूटी निभाना है, इससे कुछ मिलेगा नहीं। केवल एक ही चीज इससे मिलेगा, वो है आत्मसंतोष। हम बाबा के बच्चे हैं तो ज्ञान योग थोड़ा कर लिया, अमृत मिले, उठ गए, मुरली भी थोड़ी सुन ली, पर इससे जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलना है और जीवन में यदि सुख को भरना है, आज सुख नहीं है जीवन में, जीवन में दुख है। अगर जीवन में सुख भरना है तो ज्ञान और योग की गहराई में जाना पड़ेगा। सूर्य भाई जी का अभी सेशन था ना, किसी ने उसमें प्रश्न पूछा था, हम खुश कैसे रहे, निरोग कैसे रहे, ऐसा कोई एक प्रश्न था। तब हमारी सेवा चल रही थी, उस समय मैं रोटी बना रहा था किचन में, तो रोटी बनाते बनाते टीवी पर हम उस सुन रहे थे। भाई जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, खुश रहेंगे तो सारी परिस्थितियां, सारी बीमारियां अपने आप, ऐसा ही कुछ था ना, हल्की हो जाएंगी। खुशी बहुत जरूरी है, आत्मसंतोष, संपूर्ण आत्मसंतोष, तो उसके लिए ज्ञान और योग की गहराई में उतरना जरूरी है। और हम 3 दिनों से ज्ञान और योग की गहराई में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास को यहां ही छोड़ के नहीं जाना है। जब आप यहां से वापस जाएं तो इसको साथ लेकर के जाएं। जाहिर सी बात है, जितना यहां कर पा रहे हैं उतना तो आप अपने घर में कर नहीं पाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजना है, नौकरी पे जाना है, घर के कारोबार करने हैं, बहुत सारा कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, बहुत काम होते हैं ना, नहीं कर पाएंगे। परंतु जितना अधिक कर पाए, उन सब प्रवृत्तियों से समय निकाल कर, मोबाइल से समय निकाल कर, जितना गृहस्थी में समय जाता है हम लोगों का, उतना ही समय मोबाइल में भी जाता है, थोड़ा सा उसका भी ड्यूरेशन कट करें। समय निकालकर हमको ज्ञान और योग की गहराई में जाना है, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो बाबा ने हमें 2 मुख्य सब्जेक्ट दिए हैं साधना के लिए, बाकी धारणा और सेवा तो है ही, एक ज्ञान और दूसरा योग, और दोनों पर हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिए। हम जितना समय योग के लिए देते हैं, ज्ञान के लिए भी उतना ही समय दे, चिंतन के लिए भी उतना ही समय दे। बहुत सुंदर गीत बज रहा था, आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन, नहीं आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, और फिर आत्म परिवर्तन से क्या होगा विश्व परिवर्तन। ये क्रम है। तो चिंतन, चाहे वो आत्मचिंतन हो या ज्ञान का चिंतन हो, बहुत जरूरी है। ज्ञान जीवन के लिए कई बार योग से ज्यादा जरूरी हो जाता है। ज्ञान यानी समझ। समझ कब बनता है ज्ञान? ज्ञान हमारे पास बहुत है। बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, मन में बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए। ज्ञान सबको है, परंतु ये समझ तक नहीं आया है, समझ में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यही कारण है कि ज्ञान होते भी हम बार बार क्रोध करते हैं, ज्ञान होते भी हमारी दृष्टि वृत्ति दूषित हो जाती है, ज्ञान होते भी हम पाप कर्म कर लेते हैं, ज्ञान होते भी हम तरह तरह की बुराइयों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान को समझ में कन्वर्ट करना है, और ज्ञान समझ में तब कन्वर्ट होता है जब उसका चिंतन किया जाए। भोजन खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है, अगर पेट उसका चिंतन न करे, पेट उसका मंथन न करे, उसे पचाए नहीं, तो उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। ज्ञान भी ठीक ऐसे ही है, केवल सुन लेने से ज्ञान से ताकत नहीं आती है, उसका चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं वो समझ में बदलता है, और समझ हमारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है। जीवन जीने के लिए समझ की जरूरत है। अगर जीवन में समझ नहीं है तो हमारा जीवन संघर्षों से भरा रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जीवन जीने के लिए भी एक सेंस की जरूरत है, जो सबको नहीं आता, सबके पास इसकी समझ नहीं होती है। तो दो दिनों से इस समय आप लोग बहुत सुंदर सुंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके माध्यम से योग भी कर रहे हैं। अभी हम एक वर्कशॉप करेंगे जिसमें हम ज्ञान का चिंतन करेंगे। ज्ञान के चिंतन से समझ तो बढ़ती ही है, उससे हमारा जीवन सरल होता है, साथ साथ ज्ञान हमारा क्रमबद्ध भी होता है। सेवा भी हमारा एक सब्जेक्ट है, और उस सेवा के सब्जेक्ट में वाचा सेवा भी एक सेवा का प्रारूप है। हमें मुख से भी लोगों को ज्ञान सुनाना पड़ता है। अगर चिंतन नहीं करते हैं तो हम ज्ञान को लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचा नहीं पाएंगे। ज्ञान किसको, कब, कैसे, कितना सुनाना है, इसकी भी समझ चाहिए, और वो चिंतन से आता है। तो चिंतन करने की एक आदत होनी चाहिए। बाबा बहुत इस पर इम्फेसाइज देते हैं, रोज हम थोड़ा समय निकाल कर, जब हम यहां से वापस जाएं तो रोज थोड़ा समय निकाल कर शांत एकांत समय और स्थान पर बैठकर कुछ एक विषय, हर रोज की मुरली से एक टॉपिक ले और उस पर चिंतन करें और लिखें कुछ उस पर। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन का जो टेस्ट है ना, बहुत तेजी से बदलेगा, जीवन बदलेगा। तो अभी हम लोग ज्ञान का चिंतन करेंगे। हम आपको आज, वैसे हर बार तो हम एक सब्जेक्ट देते हैं, एक टॉपिक देते हैं, आज हम तीन टॉपिक लेकर के आपके पास आए हैं। आज तीन ग्रुप में चिंतन करेंगे। एक ग्रुप ये इस साइड जो लोग बैठे हैं, एक ये बीच का ग्रुप टू, और इधर जो भाई बैठे हैं ग्रुप नंबर 3। हम तीनों को अलग अलग टॉपिक देते हैं और आप लोग आपस में जहां बैठे हैं, वैसे तो हम 10-12 का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में डिस्कशन कराते हैं, लेकिन चूंकि यहां इतना स्थान नहीं है तो आप जहां बैठे हैं वहीं पर आपस में दो दो तीन तीन का ग्रुप बना लेंगे और बहुत धीमी आवाज में आप उस विषय पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि कितनी बातें निकल करके आ रही हैं, अच्छी अच्छी बातें जो अंदर भरी हुई हैं। तो आप जहां बैठे हैं वहीं दो तीन का ग्रुप बना लेंगे, चिंतन करेंगे और उसमें से कोई एक नोट करेगा और हर ग्रुप से दो दो लोग आ करके उसका यहां पर सार सुनाएंगे। सामने माइक रखा हुआ है, दो दो डेढ़ डेढ़ मिनट में, ज्यादा नहीं, दो दो मिनट में आप लोग उसका सार सुनाएंगे, तीनों ग्रुप से सिर्फ दो दो लोग। तो जो ये पहला ग्रुप है उसके लिए टॉपिक है सेवा का महत्व। लिख लें, सबके पास डायरी पेन है, लिख लें सेवा का महत्व। हम सब जानते हैं कि सेवा का ईश्वरीय जीवन में कितना महत्व है। सेवा एक सब्जेक्ट के रूप में है तो इस पर हम चिंतन करेंगे और इस लक्ष्य से हम चिंतन करेंगे कि ये टॉपिक पर हमको दूसरों को बोलना है, समझाना है। मान लीजिए आपको स्टेज पर बिठा दिया जाए और 10 मिनट 15 मिनट आपको इस पर लेक्चर देना है, कैसे सिस्टमाइज रूप से क्रमबद्ध रूप से आप ये ज्ञान दूसरों को सुना पाएंगे। तो ग्रुप फर्स्ट के लिए सेवा का महत्व, सेवा का महत्व। और जब भी हम चिंतन करते हैं हम अपने विषय को दो तीन छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, जैसे सेवा क्या है, हम किसे सेवा कहेंगे, दूसरा सेवा से हमें क्या प्राप्ति होती है, तीसरा सेवा के कितने प्रकार हैं, कौन कौन प्रकार की सेवा बाबा हमें करने के लिए कहते हैं। बाबा ये भी कहते हैं, एक चौथा ये भी आप लिख लें, बाबा कहते हैं कि सेवा भाग्य बनाने का साधन है। कैसे, क्लियर है, चार बातें, सेवा क्या है, उससे प्राप्ति क्या है, उसके प्रकार कितने हैं और भाग्य बनाने का साधन ये कैसे बनता है। क्लियर, तो आप लोग अपना दो दो तीन तीन का ग्रुप बनाएं और चिंतन शुरू करें। ग्रुप टू आपके लिए जो विषय है दुआएं। हमारे जीवन में दुआओं का भी बहुत बड़ा रोल है ना, तो दुआएं, दुआओं का महत्व क्या है, इसको दो तीन भागों में बांट लें। दुआएं क्या है, किसे दुआएं कहेंगे, अगर दुआओं को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, दूसरा ईश्वरीय जीवन में दुआओं का बल कैसे जमा करें, दुआओं का बल कैसे जमा करें, तीसरा हम अपने दुआओं के बल को कहां कहां नष्ट करते हैं, एक तरफ हम जमा करते हैं दूसरी तरफ हम नष्ट भी करते हैं, जाने अनजाने में चेक करना है हम अपने पुण्य के खाते को कहां कहां नष्ट करते हैं। चौथा हमारे जीवन में दुआओं का क्या रोल है, हमारे जीवन में दुआओं का क्या रोल है। ग्रुप थर्ड जो भाइयों का ग्रुप है आपके लिए बहुत सुंदर विषय है पवित्रता, पवित्रता का महत्व। पवित्रता क्या है ये हम सब जानते हैं, इसमें हम लिखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साधना पर इसका असर क्या है, पवित्रता का हमारी साधना पर क्या असर है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, और दूसरा हम इसको कैसे बढ़ाएं, अपने ब्राह्मण जीवन में हम पवित्रता को कैसे बढ़ाएं। तीसरा पवित्रता के प्रकार, पवित्रता के प्रकार। तो ये तीन सब टॉपिक हैं, आप इस पर चिंतन करेंगे, एक बहुत सुंदर और बड़ा विषय है। तो बहुत धीमी आवाज में आप चिंतन करेंगे, आपके पास 20 मिनट का समय है, 11:30 को आपका चिंतन पूरा किया जाएगा और 10 मिनट में आपसे अनुभव सुनेंगे। आप बहुत धीमी आवाज में बोलेंगे ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, बहुत धीमी आवाज में। 20 मिनट 1:00, सॉरी 1:00 आपका पूरा हो जाए, सॉरी 12:00 को। आपके पास 2 मिनट का समय और है, 2 मिनट में आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। चिंतन हुआ कुछ? चिंतन हुआ? सबका पूरा हो गया? किसी का बाकी है? जिसका बाकी है हाथ खड़ा करें। ओके, तो आप लोग जल्दी जल्दी पूरा कर लें। कुछ मक्खन निकला इससे? कुछ मक्खन निकला? निकला। जो कुछ भी अंदर पड़ा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है, चिंतन की ये विशेषता है। हमारे अंदर जो ज्ञान सोया हुआ है वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। तो अभी हम तीनों ग्रुप से दो दो लोगों को यहाँ बुलाना चाहेंगे और चाहेंगे कि संक्षेप में 2 मिनट में आप सुनाएं कि आपने क्या सार निकाला है। आप आएंगे, यहाँ सामने माइक रखा हुआ है, अपने ग्रुप का नाम बताएंगे, ग्रुप फर्स्ट से हैं कि सेकंड से हैं कि थर्ड से, और 2 मिनट में आप अपना सार संक्षेप सुनाएंगे। कौन आएगा पहले? कौन आएगा? आइए, आ जाए। सामने माइक है, यहाँ सामने माइक पड़ा हुआ है नीचे ही, टू दी पॉइंट आप सार सुनाएं और बात ना करें, कृपया साइलेंस में रहें, ध्यान से सुने। हो सकता है कि आपने जो चिंतन किया है उससे कुछ अलग बातें भी आपको सुनने को मिले, और डेफिनेटली मिलेंगी, तो आप लोग उसको नोट भी करेंगे, आपके लिए एक एक खजाना हो जाएगा, आप आगे जा करके इसको यूज कर सकते हैं, इस पर पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो अभी आप सुनेंगे, सुनाएं।
हमारा है, बोलेंगे, हमारा है ग्रुप टू।
मास्क हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए।
हाँ, हमारा ग्रुप टू है, तो हमें टॉपिक मिला है दवाओं पर, कि दवाओं की इम्पोर्टेंस क्या है और बल कैसे जमा होता है और हम उसे नष्ट कैसे करते हैं और हमारे जीवन में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दवाएं जो हैं वो मन की गुड वाइब्रेशंस हैं, और इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर और जो भी हम काम करते हैं वो इजी हो जाता है और सेवा करना भी इजी हो जाता है। और जैसे हम सोचते हैं कि बाबा हमें बार बार बताते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो बाबा के वरदान हैं वो हमारी सबसे बड़ी बड़ी दौलत है दुआओं की। और जो बाबा के बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो मेहनत दूसरों को करनी पड़ती है। अच्छा, अब बल कैसे जमा करें? उसमें सेविंग अकाउंट बढ़ाना, हमें अपनी FD बनानी है। तो बल ऐसे बढ़ेगा कि जो हम दवाएं देते हैं उसमें कोई मेरा तेरा नहीं है, ये नहीं है, वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए और उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना करें। जैसे कि कोई भी बुरा भी करता, जैसे ट्रैफिक के टाइम पे कोई आगे जाता, ओ तेरा भला हो, मुंह से यही निकले, ये नहीं कि अरे तूने क्या कर दिया, तो हमेशा ये निकले तेरा भी भला हो और हमारा भी। तो ये शुड बी फॉर ऑल, अनकंडीशनल। ये एक नहीं कि अपने बच्चे को दुआ दे दी और दूसरों को बदवा दे दी।
आगे का?
अच्छा, आगे आपने बोलना कुछ इसके बारे में? हाँ जी,
एक मिनट। ओम शांति, मेरा नाम रीना है और मैं आत्मिक स्वरूप से, मतलब लौकिक नाम रीना है। अच्छा, तो जो दूसरा है कि हम अपनी दुआएं कहाँ नष्ट करते हैं, तो जैसे आज बाबा ने बोला है, मतलब मुरली में, अगर आप लोगों को सबको याद होगा, बाबा ने कहा है कि व्यर्थ के संकल्प नहीं चलाने हैं। मतलब वाहियात बातें नहीं करनी है, व्यर्थ के संकल्प नहीं चलाने हैं। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने लिखा है, दुआओं का बल हम दूसरों को सच्चे मन से, मतलब सम्मान की, स्वमान की स्थिति में देखकर उनको हम बल दे सकते हैं। मतलब उनको नहीं पता है, बट उनको हम आंतरिक आत्मा, मतलब आत्मा से, सच्चे मन से हम उनको बल दे सकते हैं, जिससे क्या वो जो, मतलब जैसे हमने बताया कि नष्ट हो जाता है वो, मतलब बल जो है, दुआओं का बल मतलब नष्ट नहीं होएगा। तो बाबा ने कहा नष्ट होता है, जैसे आज बाबा ने मुरली में बताया कि दुआएं, मतलब हम जो वाहियात बातें सोचते हैं, व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, उनको हमने रोकना है। और उसके बाद है, हमारे जीवन में दुआओं का क्या रोल है।
इसे नष्ट तब होता है जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं।
बिल्कुल।
जब बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो फिर क्या होता है, जेलसी आ जाती, और अरे ये तो मेरी दुआओं से फल गया। नॉट लाइक दैट ओनली, कोई बीमार है उसको आपने सकाश दिया, सकाश दिया, उसकी बीमारी ठीक हो रही है, अरे मैंने मेहनत की थी, मैंने किया था, तो सब नष्ट हो गया। तो ये बॉडी कॉन्शियस में हमें ध्यान,
ठीक है। आप लोग
लास्ट वाला है भाई जी, बस लास्ट वाला मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे
जल्दी से
बता दें,
समय हो गया है, सबको भी बोलना है।
थैंक यू। बस तो
हाँ, बता।
जैसे कि हम दूसरों की कमजोरियों को, मतलब जैसे हम बार बार दूसरों की कमजोरियों को देखते हैं, तो बाबा ने आज मुरली में, मतलब मेरे मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे थे कल, तो आज वो जब मैंने मुरली सुनी तो मेरे मन के जो संकल्प थे वो एकदम शांत हो गए, और मैं एकदम आंतरिक स्वरूप में अपने आप को देखने लगी, और उस आत्मा को भी आंतरिक स्वरूप में देखने लगी, और बस यही है। थैंक यू।
ठीक है, अभी ये दूसरा कौन है, आपका क्या ग्रुप है?
दुआ
का ऊपर ही है। हाँ, दुआओं के ऊपर, ठीक है, बताएं।
दुआ में प्रार्थना, हम जब अपने हृदय में दूसरे के लिए शुभ भावना करते हैं और ईश्वर से उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, वही होता है दुआ। ऑन द अदर साइड, कोई दूसरे के हमारे लिए जब कुछ करते हैं या दुख सुख में हमें साथ देते हैं, तब हमारा मन में उसके लिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालते हैं उसी को कहते हैं दुआ। ईश्वरीय जीवन में ये दुआ का पुण्य तब जमा होगा जब हमारा अंदर हिपोक्रेसी नहीं होगा, हम अंदर बाहर से साथ होंगे, अब ईश्वर के साथ, तभी हम समीपता अनुभव करेंगे। दुआ तब खत्म होते हैं जब हम किसी का दिल दुखाते हैं और बाहर से उसके साथ एक व्यवहार करते हैं, अंदर उसके लिए हीन भावना रखते हैं, तब दुआ का पुण्य पाप में बदल जाते हैं। और हमारे जीवन में दुआ का रोल बहुत होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले हम लौकिक माँ बाप को देखते हैं, वो हमारे लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन होते हैं, अगर बुढ़ापे में उसका मुश्किल में हम उनके प्रति हमारा कर्तव्य निभाते हैं, तब उनका मन में हमारे लिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो हमें खुशी सफलता तो देंगे, साथ साथ ईश्वर भी हमारा प्रति प्रसन्न होंगे। दैट्स ऑल।
दुआओं पर दो लोगों का हो गया, अभी दूसरे ग्रुप, चलिए आप जल्दी से सुना दें और दूसरे आ जाएं, आप सुनाइए।
ओम शांति। प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल, इतना मीठी भाइयों बहन, जो हम लोग का बीके भाई बहन है, सबको मेरा दिल से दुआ देती हूँ, क्योंकि सुबह आज अमृत बेला से यहाँ पर आके जितना भी हम लोग ज्ञान लिया, तो उनका जो असर है, दुआ है ब्रह्मा बाबा का फर्श। ब्रह्मा बाबा हम लोग को इतना दुआ देते, इतने प्यार करते हैं, उसका बदलोत आज हम लोग अपना अपना स्टेज से यहाँ पर आके पहुंचे, ये मेन हो गया दुआ।
बहन जी, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप टॉपिक पे बोलिए, आप टॉपिक का जो सार निकाला है वो बताइए।
दूसरे को हम लोग हेल्प करेंगे, जो अनकंडीशन लाभ जो होता है, किसी ने मुसीबत में पड़ा हुआ है उसको अगर हम लोग हेल्प करेंगे, वो दुआ मेन दिल से आते हैं, और किसी को हम लोग हेल्प करके उसका शुक्रिया अदा नहीं करना है, ये नहीं सोचना है वो मुझे थैंक यू नहीं कहा और उसने मुझे देखा भी नहीं, क्योंकि वो पीड़ित है, तो उनको हम लोग अनकंडीशन लाभ किया, उनको हेल्प किया, तो वो हो गया दुआ। और दूसरे, हम लोग हमेशा सोचना है जो अपना घर का जितना भी सदस्य है सबको दुआई देना है, जो वो ज्ञान में आए, उसका बाद अपना फ्रेंड सर्कल को, उसका बाद अपना औरस पड़ोस को, उसका बाद पूरे देश को हम लोग को दुआ देना है। जो अभी थोड़ा आगे भाई ने बताया, जो काम लालच में क्या होता है, लोगों का बुद्धि बिगड़ जाता है, तो उसको हम लोग को त्याग करने के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बड़े तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो लोग को हम लोग को बोलना है, जो तुम लोग मोबाइल यूज करो सही ज्ञान का लिए, जो गलत ज्ञान होता है ना, जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ के पॉजिटिव वाला लो, आगे बढ़ोगे और पवित्र धाम जाने के लिए रास्ता होगा। वो हो गया पॉइंट टू। थैंक यू।
ठीक है, बैठ जाए। अभी दूसरा सेवा वाला ग्रुप किसका है? हाँ, आप सेवा वाला सुने। बहन जी तीन हो गए, समय नहीं है तो हमें सब थोड़ा सबको भी देख, लास्ट में देखते हैं, पहले दूसरे टॉपिक्स को देखें फिर बाद में।
ओम शांति। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सेवा क्या है, सेवा से हमें क्या प्राप्ति होती है? किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करना बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी रिटर्न के, कि हमें कुछ किसी से एक्सपेक्ट है कि कुछ रिटर्न में मिलेगा, तो वो सेवा है। जिससे सामने वाले को संतुष्टता महसूस हो रही है, आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो सेवा है। सामने वाले का जो समय है वो सफल हो रहा है, खुद की शक्तियां भी बढ़ती हैं सेवा करने से। एक चीज जो मैंने शिवानी दीदी की क्लास में सुनी थी, तो वो है सामने वाले को जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि सामने वाला ऐसा है वैसा है, तो वो चीज करना किसी के आगे, तो उस चीज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये सबसे बड़ी सेवा है। आगे
भाइयों की तरफ से भी कोई आ जाए।
ओम शांति। हमारा विषय है सेवा क्या है।
सेवा क्या है वो तो बहन ने बताया, अब नेक्स्ट आप बताएं, नेक्स्ट सेवा से हमें क्या प्राप्ति होती है वो बताएं, या सेवा हमारा भाग्य बनाता है, ये भाग्य बनाने का साधन है, कैसे है उस पर आप बताएं।
कई बार कहा जाता है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, या फिर ये भी कह सकते कि निस्वार्थ रूप से की गई सेवा आपके कर्मों को भी बदल सकती है। सेवा एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुण, शक्ति, सहनशीलता और एकाग्रता और प्रेम को बढ़ाती है। सेवा करने की लगन से ही व्यक्ति के व्यर्थ के चिंतन से भी बचा लेती है। सेवा से हमें खुशी भी प्राप्त होती है, और किसी भी व्यक्ति और सत्संग वगैरह में, जैसे हम सत्संग में सेवा के लिए जाते हैं तो मन को ताजगी और मेल जोल बढ़ता है, इससे अपने कर्मों की अच्छी प्रेरणा प्राप्त होती है। व्यक्ति का आत्मिक भाव और सामाजिक तथ्य और जीवन जीने की सुगमता भी प्राप्त होती है। सेवा हमें महारथी बनाती है।
बढ़िया, बाकी बचा हुआ आप सुना दें।
ओम शांति। सेवा के कितने प्रकार हैं? तो तीन प्रकार की सेवा, मनसा, वाचा, कर्मणा। जैसे परमात्मा हमें बताते हैं कि मनसा सेवा का आधार है, अपनी मनसा व्यर्थ मुक्त। जब हम अपनी मनसा व्यर्थ मुक्त करते हैं तब मनसा सेवा कर सकते हैं। अगला है वाचा। वाचा की सेवा से किसी को जब हम ज्ञान सुनाने जाते हैं, तो जैसे हमको पहले उस विषय पर खुद अच्छा चिंतन, मनन, अनुभव होना जरूरी है, तो वाचा की सेवा हमारे धारणा को मजबूत करती है। फिर जैसे बाबा बताते हैं कि जब आप ज्ञान सुनाते हैं तो आपको बहुत महिमा मिलती है, रिगार्ड मिलता है, और जैसे बहन ने बताया महारथी, जो बाबा ने कल या परसों की मुरली में ही कहा था, दो प्रकार के महारथी, तो हमको महारथी की लिस्ट में भी लाती है। और लास्ट है कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्थूल सेवा हो गई, एक स्थूल सेवा, और दूसरी जो बाबा कहते हैं कि आप अपने गुणों से गुणों का दान करो कर्मों के द्वारा। तो कर्मों में जब गुण आता है वो सबसे श्रेष्ठ सेवा कही जाती है। फिर लास्ट टॉपिक है सेवा भाग्य बनाने का साधन कैसे है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि एक का पदम गुणा। और जब हम सेवा करते हैं, जैसे सेवा का अर्थ होता है देना, सर्विस इज टू गिव, तो देने के लिए पहले खुद लेना जरूरी है। तो भाग्य तो बन ही जाता है, पहले खुद लिया दूसरों को दिया, खुद भी भरपूर, दूसरों को देने से दुआएं भी मिल गई और एक का पदम गुणा भी मिल गया। ओम शांति।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चिंतन किया आप सबने, दोनों ग्रुप ने बहुत अच्छा चिंतन किया। लेकिन एक जो चीज, जिस लक्ष्य से मैंने इसका अंतिम जो सब टॉपिक दिया था कि सेवा हमारे भाग्य बनाने का साधन कैसे बनता है, यानी कौन सी सेवा, किस प्रकार की सेवा हमारे भाग्य को बनाने के निमित्त बनता है। सेवा हम सब करते हैं, लेकिन सबका भाग्य एक जैसा नहीं बनता है। तो सेवा का वो कौन सा प्रकार है, किस तरह की सेवा, यानी सेवा करते समय हमारी मानसिकता कैसी हो, सोच कैसा हो, हमारी भावनाएं कैसी हो, सेवा के प्रति और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कम सेवा में भी अधिक प्राप्ति देते हैं, आप लोग इस पर जरूर चिंतन करना। 1 से 4 बजे तक भोजन और रेस्ट का समय है, बल्कि 4:30 बजे तक, 4:30 आपको आना है ना यहाँ पे, तो आपके पास बहुत समय है। इतना तो रेस्ट करेंगे नहीं, आधा घंटा भोजन में लगता है, 1 घंटा रेस्ट, समय जो बचता है उस पर बैठ करके इस पर चिंतन करना। सभी सेवाएं करते हैं, लेकिन फलीभूत किसकी सेवा होती है, उसके लिए हमारी सोच कैसी हो, भावनाएं कैसी हो, सेवा के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा हो, किस भाव से हम सेवा करें, तो ये बहुत गहन विषय है, आप इस पर करना। आए भाई, इतने सारे भाई नहीं, सिर्फ 2 भाई सुनाए तो अच्छा है, आ जाए एक। अच्छा, आप लोग अलग अलग सुनाएंगे तो आ जाए, अगर अलग अलग सुनाना है टॉपिक्स तो सुना दें, क्योंकि अभी हमारे पास 5-7 मिनट समय और है। अपना टॉपिक का नाम बताएं।
ओम शांति। तीसरे ग्रुप के टॉपिक का नाम था पवित्रता। तो सबसे पहले पवित्रता का महत्व, बाबा ने मुरली में एक ही वाक्य में पवित्रता का महत्व बता दिया है, जो हम कई बार मुरलियों में सुनते हैं। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है, अर्थात पवित्रता ही वो गुण है जिससे कि आत्मा में बाकी सारे गुण जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो सारे जो है वो स्वतः ही आ जाते हैं। पवित्रता से जो है हमारे जो मन है उसमें श्रेष्ठ संकल्पों की जो रचना है, जैसे सूरज भाई जी ने क्लास में बताया कि हमें श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी होगी, तो वो जो श्रेष्ठ संकल्प है वह स्वतः ही जो मन में है उसकी रचना होने लगती है। दूसरा था पवित्रता के प्रकार। तो ऐसे तो पवित्रता के कई प्रकार हैं, लेकिन जो मुख्य 7 प्रकार की पवित्रता है वह इस प्रकार है। सबसे पहला आता है मन की पवित्रता, दूसरा वचन की पवित्रता, तीसरा कर्म की पवित्रता, चौथा संबंध संपर्क की पवित्रता, 5वां दृष्टि की पवित्रता, 6ठा वृत्ति की पवित्रता और 7वां स्वप्न की पवित्रता। तो ये जो 7 मुख्य प्रकार हैं पवित्रता के, ये पवित्रता के प्रकार हैं। आगे भाई जी बताएंगे कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता को कैसे बढ़ाएं और साधना पर इसका क्या असर होता है।
ओम शांति। सुंदर चिंतन किया, पवित्रता के इतने प्रकार कभी आपने सोचे थे, ये नोट करना। जो भाइयों ने ये चिंतन किया है, बहुत सूक्ष्म चिंतन, वाचा की, मनसा की, संबंध संपर्क की, कर्म की, ये बहुत डेप्थ है। और एक एक पर एक एक हफ्ता पुरुषार्थ करना, अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी पवित्रता बहुत हद तक अच्छी हो जाती है। तो बहुत सुंदर, भाई के लिए एक बार और ताली बजाएं आप लोग, बैठ जाएं।
ओम शांति जी। अब साधना पर इसका क्या असर होता है, हम पवित्र रहते हैं तो दूसरी आत्माएं जो है उन्हें हमारी वाइब्रेशन मिलती है और पवित्र से आत्मा पर बोझ कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हमारी जो बुद्धि है वह दिव्य होती है, जीवन में खुशियों का आगमन होने लगता है और आत्मा जो है वह निर्विघ्न बनती है। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता को कैसे बढ़ाए, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता बढ़ाने के लिए बाबा ने जो योगी जीवन के 4 स्तंभ बताए हमें उन पर ध्यान देना होगा। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। अगर हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने होंगे तो हमें योग बल बढ़ाना होगा, जिससे पवित्रता अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगी।
बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट।
ओम शांति।
चालू है, बोले। नहीं, आपने स्विच ऑफ कर दिया, उसको ऑन कर लीजिए। हाँ, बस अभी बोलिए।
ओम शांति। पवित्रता के ऊपर मैं तो अपने विचार मंथन से कहूंगा कि जैसे मैंने मुरली से सीखा, बाबा ने जैसे हम जुड़े थे बाबा के साथ, तो बाबा ने पवित्रता के ऊपर बताया था कि सबसे पहले जो हमारी क्रिमिनल दृष्टि है इसको हमने हटाना है। तो मैंने भी सोचता था क्रिमिनल दृष्टि मतलब क्रिमिनल आइज बाबा बोलते थे, तो मैंने कहा आइज, मैंने क्रिमिनल सोचता था जो आतंकवादी जैसे होते हैं, तो सोचते सोचते मैंने कहा आइज के ऊपर आया, मैंने कहा आंखें हैं। तो मैंने फिर जैसे कहते ना जो इंसान होते हैं हर एक की नजर जाती जाती है, तो मैंने सबसे पहले पुरुषार्थ उस पर किया। तो दो चार दिनों में इतना फायदा हुआ ना मुझे कि जितनी भी बहनें बैठी हुई सेंटर पे उनको वो बता सकते हैं कि हम कितने पवित्र बन चुके हैं। और दूसरा था कि हमारी जैसे बाबा ने बताया कि हमने जाना नई दुनिया में, नई दुनिया में हम कैसे होंगे, पवित्र जाएंगे ना, मेरा बाप पवित्र, परमात्मा पवित्र। तो हमें सुबह बाबा उठाता है 3 बजे उठाता है, किस लिए उठाता है कि हमें 35 से 52 बनाना है। उसने इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम 52 बनना हमने, और नई दुनिया में बिना उसके हम जा नहीं सकते। दूसरा मैंने एक पर अपना जोड़ा था कि एक तो क्रिमिनलाइज हो गया, दूसरा था कि जैसे हम ना मेरे से जो बड़ी है बहन है मैं उसको माँ की दृष्टि से देखता हूँ, जो मेरे से बराबर की है उसको मैं अपनी बहन की दृष्टि से देखता हूँ, और जो मेरे से छोटी है चाहे 2 दिन बड़ी है छोटी है जैसे मतलब उसको मैं बेटी की दृष्टि से देखता हूँ। तो दृष्टि अपने आप जब चेंज हो जाएगी तो नेचुरल आप चलते फिरते देवता बन जाएंगे। बाकी बातें तो पवित्र बहुत हैं, जितनी मर्जी कर लो।
बहुत अच्छा।
जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बाबा तो बहुत कुछ कहता हमें लेकिन हम कर क्या रहे हैं ये हमें नहीं पता चल रहा।
बहुत अच्छा। सार रूप में भाई जी का कहना है कि हम अपने दृष्टिकोण को,
वो कहते हैं ना कि मेरा बाप पवित्रता का सागर भरने आया यहाँ से मैं गागर, मुझ बच्चे को पति से बनाने आया पावन, मास भी चल रहा है यह सावन, श्रीमत पर चल जला दिया अपने अंदर का पूरा रावण।
बहुत अच्छा। आप लोग भूल गए कि आप लोग मौन और साइलेंस में है, ताली कैसे बजानी है। उमंग उत्साह में भूल गए कि ताली कैसे बजानी है। ठीक है।
ओम शांति। हमारा टॉपिक है पवित्रता। तो पवित्रता जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, पवित्रता आत्मा का श्रृंगार है, पवित्रता से मन बुद्धि संस्कार परिवर्तन होते हैं, पवित्रता से वृत्ति परिवर्तन होती है, पवित्रता से दृष्टि परिवर्तन होती है। पवित्रता होंगी तो ही आत्मा को ज्ञान धारण कर पाएंगे, पवित्रता से ही हम दैवी संस्कार धारण करते हैं, पवित्रता से आत्मा एक आंतरिक बल, आत्मा में एक आंतरिक बल आ जाता है जिससे वह सारी मुसीबतों को पार कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। पवित्रता से साधना पर क्या असर पड़ेगा? तो हम दैवी फैमिली के मेंबर्स बनेंगे, हम सारे बाप की आज्ञा को धारण कर पाएंगे, मतलब बाबा जो ज्ञान बताते हैं उसको हम धारण कर पाएंगे। जैसे पवित्रता बढ़ती जाती है वैसे हमारा आत्मिक बल बढ़ता जाता है, जितनी पवित्रता ज्यादा उतनी हमारी पावरफुल स्थिति बनती जाती है और उतना ही हमारा भविष्य बनता जाता है। पवित्रता हम कैसे बढ़ाएं? पहली बात है आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। जैसे सूरज भाई बताते जल को चार्ज करके पिए, मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूं, 7 बार चार्ज करके पिए, परमात्मा की याद से ही हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है। हम ज्ञान का मंथन वरदानों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो ही हमारी पवित्रता बढ़ेगी। सात्विक भोजन करने से पवित्रता बढ़ेगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति से पवित्रता बढ़ेगी, और 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे तो ही पवित्रता बढ़ेगी, क्योंकि हमारे 5 स्वरूप पवित्र है। भाई जी टाइप्स बताएंगे।
बहुत अच्छा।
ओम शांति। आई थिंक भाइयों ने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए, एक दो पॉइंट जो मैं समझता हूँ कवर नहीं हुआ। टाइप्स ऑफ पवित्रता के अंदर फिजिकल पवित्रता और मेंटल पवित्रता आते हैं। फिजिकल पवित्रता के अंदर हम अपनी बॉडी को कैसे प्योर रखें, इसके अंदर सात्विक भोजन आता है, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना, ये अपनी बॉडी को प्योर रखने में काफी मदद देगी। एंड मेंटल प्योरिटी के अंदर जैसे बाबा ने बताया, आत्मिक रिमेम्बरेंस में रहना, दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल द अदर थिंग्स। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तो बहुत सुंदर चिंतन सबका रहा है, और जब हम ग्रुप में बैठ करके चिंतन करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो मेरे दिमाग में बात नहीं थी वो भी निकल करके आई है। तो ये आप सब यहाँ से जाने के बाद भी अपने अपने सेवा केंद्रों पर ये जरूर करना। हम सबके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए कि अब ये संसार बहुत लंबा नहीं चलना है। कईयों को लगता है ना, बाबा इतने साल से कह रहे हैं, 80 साल हो गए, 82 साल हो गए, बाबा कह रहे हैं विनाश होगा, होगा, नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। अब जैसे सिनेरियो बन रहे हैं ना, धीरे धीरे, संगम 100 साल का ही है ना, कितने साल बीत गए, 100 साल में कितने साल बीत गए, 85, कितना बच गया, तो कुछ तो स्थापना के लिए भी चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग गफलत में न रहें। ये कथा हम लोग ही दूसरों को सुनाते हैं, शेर आया, शेर आया, शेर आया, लगता था कि अरे ये तो मजाक कर रहा है, एक दिन तो आ गया ना। तो हम ही ये कथा दूसरों को सुनाते हैं, तो हमारे दिमाग में भी ये क्लियर होनी चाहिए बात कि एक दिन ये विश्व परिवर्तन होना ही है, और उसका अब समय चल रहा है। हमें अपने विवेक के बल से उन सब बातों को समझ लेना चाहिए जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये बेला अंतिम बेला है, सृष्टि के महापरिवर्तन का समय है, और ऐसे समय में गफलत करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जो बार बार मैं खुद से पूछता रहता हूं, जब से मैं ज्ञान में आया हूं तब से मैं खुद से ये बात पूछता हूं कि तुमको ज्ञान में आने के लिए किसी ने विवश नहीं किया था, किया था? ज्ञान में चलने के लिए किसी ने हमें विवश नहीं किया था, अपनी खुशी, अपनी मर्जी से हम आए हैं, क्योंकि ये जीवन हमें अच्छा लगता है, हमें इसके फायदे नजर आते हैं। तो जब पुरुषार्थ करने की बारी आती है तो फिर हम ढीले क्यों हो जाते हैं? हम अपनी मर्जी से आए, अपनी खुशी से आए, किसी ने बाध्य नहीं किया। तो पुरुषार्थ भी खुशी से करें ना, रुचि से करें, उसके लिए किसी को बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े, बाध्य करने की जरूरत ना पड़े, बाध्य कोई कर भी नहीं सकता। स्पिरिचुअल साधना एक ऐसी चीज है जिसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अब समय है, और समय की समीपता को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपने को बाह्य मुखता से अंतर्मुखता की ओर लाएं, लौकिकता से मन को निकालकर धीरे धीरे अलौकिकता की ओर ले आए। धन, साधन, बच्चे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बनेंगे, जिसको जो बनना है बनेगा, बहुत साधन की जरूरत नहीं, खुश रहने के लिए साधन की जरूरत नहीं, बहुत पैसे की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है, योग बल की जरूरत है। तो हम अब अपने आप को वाइंड अप करें, लौकिक प्रवृत्तियों से अपने आप को धीरे धीरे मोड़ करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए, जीने के लिए धन की भी जरूरत है, समाज में रहने की भी जरूरत है, समाज की जो प्रथा है उसको निभाने की भी जरूरत है, परंतु जितना जरूरी हो उतना ही, मोबाइल भी उतना ही यूज करना है जितना, मोबाइल के दो ही काम है, एक बात करना और दूसरा थोड़ा बहुत ज्ञान वर्धन के लिए इंटरनेट की यूज, कुछ देखना हो, कोई मेल आया हो, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज, जरूरी, समय व्यर्थ गंवाने के लिए ये सब साधन बाबा ने हमको नहीं दिए हैं। तो अब धीरे धीरे अपने आप को वाइंड करें और अपना वो बचा हुआ समय ज्ञान योग में लगाएं। क्योंकि जब आप यहाँ से जाएंगे तो अगले 84 जन्मों के लिए, केवल 21 जन्मों के लिए नहीं, नेक्स्ट पूरे 5000 ईयर्स के लिए आप यहाँ से लेकर के जाएंगे, धन साधन बच्चे सब यहीं रह जाएंगे, पर जो किया होगा ना साधना वो जरूर साथ जाएगा। तो उसमें बैठ करके चिंतन कर ले, मुरली रोज सुने, मुरली पर फोकस्ड रहे, ज्ञान का चिंतन करें, ज्यादा से ज्यादा योग करें, और जैसा कि सूर्य भाई जी प्रश्नोत्तरी के सेशन में कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हमको बैठ के ही योग करना है, वैसे भी 8 घंटा योग बैठ के नहीं किया जा सकता, इतना समय किसी के पास नहीं, परंतु जरूरी दोनों है, बैठ के योग करना भी जरूरी है और चलते फिरते योग करना भी जरूरी है। तो बैठक योग के साथ साथ कर्मयोगी बनना भी जरूरी है, पर इन सब के पीछे जो बैकबोन है ना वो है चिंतन, ज्ञान को सुनना और उसका चिंतन करना, दिन में कई बार एक एक पैरा मुरली पढ़े, जरूरी नहीं पूरा 4 पेज एक साथ पढ़ जाए। दादी के बारे में सुनाते हैं ना, जानकी दादी के बारे में, बड़ी दादी कई बार मुरली पढ़ती थी दिन में। किसी ने पूछा आपकी स्व उन्नति का आधार क्या है, उन्होंने क्या कहा, दिन में 10 बार मुरली पढ़ो। अब 10 बार कोई पूरा 4 पेज नहीं पढ़ सकता, एक पैराग्राफ पढ़िए, उस पर चिंतन करिए, बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा, इसके पीछे तथ्य क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ ज्ञान क्या है, समझ क्या है, और मैं इसमें कहां पुरुषार्थ कर सकता हूं, मेरे पुरुषार्थ के लिए यहां कौन सी बात है। आज भी बहुत अच्छी बात थी ना, उन्नति के लिए फालतू की बातों में नहीं जाना है, पर चिंतन नहीं करना है, अपने आप को बिजी रखना है। तो हम साधना के में समय निकालें, समय दें, पुरुषार्थ करें, और प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल करके ज्ञान का चिंतन जरूर करें, उसको लिखें, तो ये हमारा जीवन सचमुच इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अतिंद्रिय सुख आएगा कि तब हमें सुख के लिए धन और साधनों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं होगी। बेसिकली हम किसी भी चीज के पीछे क्यों भागते हैं, उससे हम सुख ड्रॉ करना चाहते हैं, धन से, साधनों से, विकारों से, दैहिक आकर्षण से, हमको प्लेजर चाहिए। वो जब योग से आने लगता है, ज्ञान के चिंतन से आने लगता है, ज्ञान से भी बहुत सुख मिलता है, ज्ञान से भी हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती है, आनंद आता है। आप लोगों ने अभी चिंतन किया, आनंद आ रहा था ना, खुशी हो रही थी ना, मन एकाग्र हो रहा था ना, आपके आसपास वाले लोग क्या बात कर रहे हैं आपको नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, आप क्या कर रहे हैं उसी पर फोकस्ड थे, तो इससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ये सब चिंतन करने की बात है, तो ये चिंतन बहुत ही फायदे की चीज है, तो इसकी आदत को बना करके रखनी है, तो ये जीवन हमारा बहुत सुंदर होता जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं, 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर बहुत शांति से फरिश्ते स्थिति में मौन में भोजन में जाएंगे, फिर भोजन करके थोड़ा विश्राम करके बैठ करके हम कुछ चिंतन जरूर करेंगे। ओम शांति।